ओम शांति। अभी अभी क्लास में हमने सुना योग की गहराई में जाने के लिए पहले बाबा के प्यार में लवलीन होना होगा। आज वरदान में भी बाबा ने यही कहा, चढ़ती कला का अनुभव करना है तो सदा बाप के लव में लवलीन रहो। अब प्रश्न ये उठता है, लव तो है बाप से, लेकिन सदा बाप के लव में लवलीन कैसे रहे, क्या है उसकी विधि? आइए इसी विषय पर मार्गदर्शन करने हमारे बीच उपस्थित है मधुबन के आदरणीय शीलू दीदी जी। आपका इस सभा में दीदी जी बहुत 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 है दिल से स्वागत है, स्वागत है। शुरू से लेकर कमेंट्री जो हमने सुनी है उसके द्वारा आपकी आवाज से तथा बहुत शुरू शुरू से टीवी के पर्दे से लेकर आपके चेहरे से हम सभी भली भांति परिचित है। आपकी जीवा को स्वयं बाप दादा ने सरस्वती का वरदान दिया है जो कि बिल्कुल सार्थ है। 1959 में विज्ञान में पदवी लेने के पश्चात आप 1969 से यज्ञ सेवा में समर्पित हुए, देश विदेश के अनेक स्थानों पर सेवाएं देके 1976 से आप मधुबन महायज्ञ में सेवारत है। विशेष रूप से राजयोग शिविर एवं विदेशियों की सेवा में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अफ्रीका तथा मॉरिशस के सेंटर खोलने के आप निमित्त रह चुके हैं। एजुकेशन विंग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है। देश विदेश की यात्रा करके हजारों आत्माओं तक आपने बाबा का संदेश पहुंचाया है। तो आइए हम क्लास सुनते हैं, सदा बाप के लव में लवलीन रहने की विधि क्या है, आदरणीय शिलू दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया कि बाप के लव में लवलीन रहो तो सफलता मिलेगी, चढ़ती कला होगी और सफलता मिलेगी। तो बाप के लव में लवलीन होना ये ब्राह्मणों की भाषा है। बाहर वाला ये सुनेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, बाप कौन। फिर लव और लीन, लव तो इंग्लिश शब्द है और लीन हिंदी शब्द है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों का मेल किया है लवलीन। तो भगवान के प्यार में खो जाना, अथवा हम भगवान को जानते हैं तो हम कहेंगे शिव बाबा के प्यार में खो जाना, यही है बाप के लव में लवलीन होना। और अगर सरल शब्दों में और कहें तो बाबा को बहुत प्यार से याद करना, दिल से याद करना। जब इसलिए बाबा कहते हैं योग, योग शब्द मत कहो लेकिन याद कहो। याद तो बहुत सहज है, एक छोटा बच्चा भी अपने पिता को याद करता है, एक स्टूडेंट अपने टीचर को याद करता है, एक शिष्य अपने गुरु को याद करता है। लेकिन उस याद में खो जाना, उसमें तो फिर प्रेम चाहिए। याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो प्रेम से याद हो। बाबा ने उस दिन कहा कि भक्त भी भगवान को याद करते हैं, तुम बच्चे भी याद करते हो, तो अंतर क्या है भक्तों में और तुम बच्चों के बीच में? भक्त तो भले याद करते हैं, हे भगवान कहते हैं, लेकिन उस भगवान की पहचान तो है नहीं, परिचय तो है नहीं, और हम परिचय और संबंध के साथ याद करते हैं। तो याद भी कितने प्रकार की होती है। किसी ने उसका विवरण दिया कि याद चार प्रकार की होती है। एक याद है जो हम करते हैं, किसी को हम याद करते हैं। दूसरी याद होती है जो याद आती है, मुझे फलाने की बहुत याद आ रही है तो याद आती है। तीसरी प्रकार की याद है जो याद सताती है, हम भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते हैं उसको, तो वो याद सताती है। और चौथी याद है जिस याद में हम समा जाते हैं, उसको इंग्लिश में कहेंगे लॉस्ट इन लव, लॉस्ट इन लव, खो गए उस प्यार में। और वो प्यार भरी याद में जैसे हम खो गए, सुध बुद्धि भूल गए सब। अब ये चार प्रकार की याद का आधार भी अलग अलग है। पहली याद होती है जो हम करते हैं, वो याद होती है स्वार्थ की याद। कोई चीज की कमी पड़ी तो हे भगवान हाँ ये मुझे दे दो, कुछ चाहिए तो हे भगवान हाँ बच्चा दो, हे भगवान हमको नौकरी दो, हे भगवान मकान दो, हे भगवान ये दो, मांगते रहते हैं। तो कोई भी चीज़ चाहिए तो भगवान से मांगते हैं, तो ये स्वार्थ की याद है। अगर स्वार्थ नहीं है तो याद भी नहीं है, है ना। विद्यार्थी का एग्जाम होगा अगले दिन, तो एक दिन पहले वो मंदिर में जाएगा, हाँ भगवान मुझे पास कर देना, भगवान मुझे पास कर देना, अगर मुझे पास कर दिया ना तो मैं इतना भोग लगाऊंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो एक तो स्वार्थ की याद कि पास कर देना, फिर उस याद में कि अगर पास किया तो मैं इतना भोग लगा दूंगा, तो भगवान के साथ सौदा करना है, तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगा, और अगर पास नहीं किया तो भगवान को प्रसाद भी नहीं चढ़ाएगा क्योंकि पास ही नहीं किया भगवान ने, तो ये तो सौदा हो गया। तो स्वार्थ में सौदा हो सकता है, जहां सौदा है माना कोई स्वार्थ है। तो भक्ति मार्ग में तो इस प्रकार की याद है, पर ज्ञान मार्ग में तो अलग प्रकार की याद है। हम बाबा से कुछ भी मांगते नहीं है, बाबा से कुछ भी मांगते नहीं है, हम बाबा को ये नहीं कहते बाबा ये दो ये दो ये दो, नहीं, परंतु बाबा को दिल से थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं, हाँ बाबा आपने हमें बहुत कुछ दिया है, क्योंकि जो मिला है वो भी तो उनका ही दिया हुआ है। भक्ति मार्ग में तो गाते थे ना, ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो भगवान ये सब तेरा है, तो तेरा तेरा कहते रहे भगवान को सब सब चीजों के लिए। लेकिन फिर स्वार्थ तो था ही, फिर मंदिर में तो कहा आरती में तेरा, और बाहर आए तो तेरा भूल गए, मेरा 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 करने लगे। तो ये भक्ति मार्ग की याद है। तो ज्ञान मार्ग में ये याद नहीं है, हम बाबा से कुछ भी मांगते नहीं है, बाबा कहते कुछ भी मांगो नहीं, कुछ भी मांगने की जरूरत ही नहीं है। तो कई समझते हैं अच्छा हम भगवान से कोई वस्तु नहीं मांगे, लेकिन गुण तो मांग सकते हैं। हे भगवान मुझे शक्ति दो, हे भगवान मुझे प्यार करो, हे भगवान मुझे हिम्मत दो, तो गुण कोई मांग सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये गुण भी मांगने की जरूरत नहीं है। हे प्रभु मुझे शांति दो, बाबा कहते शांति तो तुम्हारे गले का हार है। हे प्रभु आशीर्वाद करो, बाबा कहते आशीर्वाद अब अपने ऊपर करो, मेरी श्रीमत पर चलो तो आशीर्वाद तो मिलेगी। शक्ति दो, कोई कहे बाबा कहते शक्ति भी कोई मांगने की चीज थोड़ी है। सूरज की किरणें तो आपको लाइट दे रही है, आप उनके आगे खड़े हो जाओ आपको किरणें मिलती रहेगी, मांगना थोड़ी होता है सूरज से। तो गुण भी मांगने की जरूरत नहीं है, तो न वस्तु मांगने की जरूरत है न गुण मांगने की जरूरत है। वस्तु मांगने की बजाय जो है उसका दिल से धन्यवाद करो और कहो बाबा ये भी सब तेरा है, और गुण मांगने की बजाय क्या करो, ये हमारा अधिकार है। मैं शांति मांगती नहीं हूँ, लेकिन क्या कहती हूँ, शिव बाबा आप शांति के सागर हो और मैं आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ, ये मेरा अधिकार है, क्योंकि ये मेरा भी स्वभाव है। जो परमात्मा का स्वभाव है वो आत्मा का भी स्वभाव है, जो परमात्मा के गुण है वो आत्मा के भी गुण है। तो ये गुण भी मांगने की दरकार नहीं है, लेकिन बाबा की याद से वो गुण अपने आप अनुभव होते हैं, तो गुण भी मांगने की जरूरत नहीं है, वो अधिकार है हमारा। फिर और क्या मांगते हैं भगवान से, चलो गुण भी नहीं मांगो, कोई वस्तु भी नहीं मांगो, तो तीसरी चीज कौन सी मांगते हैं भगवान से, कोई भूल हुई तो कहेंगे माफ करो, माफी मांगते हैं, बहुत माफी मांगते हैं, भगवान मेरे से ये भूल हुई मुझे माफ कर दो, क्योंकि अंदर में ये समझते हैं ना कि मैंने ये भूल की है तो मुझे इसकी सजा मिलेगी, मेरे कर्म का मुझे फल मिलेगा। तो भगवान तो माफ करने वाला है, प्यार का सागर है, वो मुझे माफ कर देगा। तो बाबा तो कहते हैं बच्चे माफ भी नहीं होगा, माफ भी नहीं होगा, जो कर्म किया उसका फल तो मिलेगा, लेकिन अगर बाबा की याद हो तो वो जो फल मिल रहा है वो फल सूली से काटा हो जाएगा, क्योंकि शक्ति बाबा की याद से मिली। हाँ, तो इसीलिए माफी नहीं मांगो, लेकिन क्या करो, प्रतिज्ञा करो, बाबा के आगे दृढ़ संकल्प करो कि बाबा अब मैं ये भूल दोबारा नहीं करूंगा। संकल्प करो, प्रतिज्ञा करो, तो जब अंदर में वो दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं तो बाबा की शक्ति मिलती है। और फिर बाबा कहते हैं सच बता दिया बाबा को तो आधा माफ, बाकी तो थोड़ी तो सजा तो मिलेगी लेकिन सूली से काटा हो जाएगा, क्योंकि अंदर में संकल्प कर लिया, परिवर्तन कर लिया तो आधी सजा तो माफ होता है ना। कई ऐसे होते हैं ना, जेल में पड़े हैं, कोई बहुत बड़ा अपराध किया है, जेल में पड़े हैं, लेकिन जेल में रहते हुए भी अगर उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, सभी और कैदियों से जेलर से उनका बहुत अच्छा व्यवहार है और बहुत मेहनती है, सच्चाई दिखाते हैं, तो फिर उसकी सजा माफ भी हो जाती है, माफ हो जाती है, हाँ हो जाती है, क्योंकि उसने अपने आप में परिवर्तन लाया। लेकिन अगर जेल में रहकर भी क्रोध करता है, ईर्ष्या करता है, लड़ता है, झगड़ता है, तो फिर सजा और बढ़ जाती है, लेकिन परिवर्तन कर लिया तो फिर सजा कम भी हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं केवल माफी नहीं मांगो लेकिन परिवर्तन कर लो अपने आप में। तो देखो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना अंतर है। तो एक है स्वार्थ की याद, जो हम करते हैं, दूसरी याद है संबंध की याद। दूसरी याद भी लगभग स्वार्थ की ही याद है, परंतु उसमें संबंध होता है, हम किसको जानते हैं, और हम अचानक उसकी हमको याद आई। क्यों याद आई? हमने याद तो किया उसको, उसकी याद अपने आप आई, क्योंकि अंदर में कोई संबंध है। तो जहाँ संबंध है ना, वहाँ उसकी याद आती है। कभी उसने हमको मदद किया होगा तो उसकी याद आती है, क्योंकि संबंध है। लेकिन जो याद सताती है, वो सताती जो याद है, वो उसके साथ प्रेम भी है और संबंध भी है, दोनों। जो याद आती है, उस जरूरी नहीं कि उसमें संबंध, उसमें कोई प्रेम हो। पर क्यों याद आती है? क्योंकि उसने मुझे कभी मदद किया था। हाँ, तो कई बार होता है ना, किसकी बहुत याद आ गई तो किसको कोई कहेगा, क्यों उसको याद कर रही हो, क्यों उसकी याद आ रही है? तो कहते उसने मुझे पिछले साल मदद किया था, अभी वो फिर से मुझे मदद कर सकता है, इसीलिए उसको याद किया, या उसकी याद आ गई कि वो फिर से मदद कर सकता है। तो स्वार्थ के साथ फिर थोड़ा स्नेह है या संबंध है तो फिर याद आती है। परंतु याद सताती कब है? सताती कब है? जब वो व्यक्ति अभी हाजिर भी नहीं है और कभी आएगा भी नहीं, शरीर छोड़ चुका है, परंतु इतना घनिष्ठ संबंध था उनसे, इतना घनिष्ठ प्यार था उससे, जो अभी हमको यही कहेंगे अभी भूल जाओ उसको, अभी वो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन हम उसको भूल नहीं सकते, है ना? पत्नी अपने पति को भूल नहीं सकती है, पति भी अगर पत्नी गुजर गई तो अपनी पत्नी के वियोग में वो भी मर जाता है, भूल नहीं सकता उसको, क्योंकि साथ रहे हैं 50 साल 60 साल साथ रहे हैं, तो कैसे भूलेंगे? तो वो याद सताती है। अब बाबा के साथ हमारी याद कैसे हो? करने वाली तो है ही नहीं, क्योंकि स्वार्थ नहीं है। अब आने वाली भी नहीं है, केवल याद आए बाबा की, उसमें भी थोड़ा स्वार्थ तो भरा हुआ है। चलो संबंध है, बाबा मेरा पिता है, शिक्षक है, सतगुरु है, ठीक है, तो बाबा की याद आती है, और सताने का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि हमारा वो सलोना साजन तो सदा अमर है, सदा उसको अपने साथ रखो, उनको अपने से अलग करते क्यों? शरीरधारी तो है नहीं, और मैं आत्मा भी शरीरधारी नहीं हूँ, तो इसीलिए उनको अपने से अलग ही क्यों करते हो? बाबा कहते हैं कंबाइंड करो, जहाँ हो बाबा भी वहीं हैं, जिसको ही फिर भक्ति मार्ग में सर्वव्यापी कह दिया। तो है तो ये भावना की बात ना, ये कोई सैद्धांतिक रूप तो नहीं है कि वो सब जगह है, पर भावनात्मक बात है कि बाबा मेरे साथ सदा है, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, हजारों भुजाओं वाला मेरे साथ है। तो फिर याद सताने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हम उनको अपने से अलग करें क्यों? इसीलिए ये चौथी प्रकार की याद है, और वो कौन सी याद है? जिस याद में हम समा जाते हैं, इसी को ही भक्तों ने कह दिया आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, और फिर उसकी समाधि हो जाती है। समाधि योग की अवस्थाओं में जो आखिरी अवस्था है, अष्टांग योग में आठवीं अवस्था है समाधि, यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा, फिर लास्ट में है समाधि। तो समाधि का मतलब है समान हो गए, समान हो गए। तो समान कब हो सकते हैं? समान तब हो सकते हैं जब कोई समानता हो। समानता होगी तभी समा सकते हैं। जैसे अभी आप पानी में तेल मिलाओ तो तेल तो मिलेगा नहीं पानी में, वो ऊपर ऊपर तैरता रहेगा, पानी में नहीं मिलेगा। लेकिन दूध मिलाओ तो वो दूध उस पानी में समा जाएगा, क्योंकि उसमें एक दोनों ही तरल पदार्थ है। तो इसीलिए पता नहीं चलेगा दूध कितना है, सब पानी कितना है। तो कुछ समानता जरूर चाहिए, तब समा सकते हैं। कुछ समानता जरूर चाहिए तभी मिल सकते हैं। हम रेडियो ऑन करते हैं, हमें कोई रेडियो स्टेशन चाहिए, तो ऐसे ही रेडियो की सुई घुमाने से वो रेडियो स्टेशन नहीं मिलेगी। लेकिन कैसे मिलेगी रेडियो स्टेशन? जब हमें पता चले कि वो रेडियो स्टेशन जो है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पर है, कौन सा उनका वेवलेंथ है। तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, कौन सा मीटर बैंड, ये सब पता होना चाहिए। तब रेडियो में वो सब कुछ है, फ्रीक्वेंसी भी लिखी हुई है, मीटर बैंड भी है, तो सब कुछ है। तो उसी पर ही हम रेडियो में वो सुई रखेंगे, और जैसे ही वो सुई उसी स्थान पर रखी, वो रेडियो स्टेशन से आवाज़ हमको आने लगेगी। और जगह हम सुई रखेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी, पर वही फ्रीक्वेंसी, वही मीटर बैंड, वही वेवलेंथ चाहिए, समानता चाहिए। वैसे भी योग में समाना, उसमें भी समानता चाहिए। एक कुमार और कुमारी की सगाई करनी होती है, होती ना, दोनों की जन्म पत्री ले जाते हैं ज्योतिषी के पास, और ज्योतिष को कहते हैं जरा हाँ गुरुजी देखो तो से इनका योग है, अब विवाह करना है तो योग चाहिए।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बलदार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो।
शिव पिता को
सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है।
तो विवाह करना है माना संबंध जोड़ना है, तो संबंध जोड़ने के लिए योग देखा जाता है। तो क्या योग देखते हैं, दोनों की कुंडली मिलाते हैं ना, कुंडली होती है ना वो मिलाते हैं जन्म पत्री में, और कुंडली मिलाते समय ये देखते हैं नक्षत्र समान है, ग्रह समान है, ये सब उसमें मेल खाते हैं, कहीं टक्कर तो नहीं है। तो अगर टक्कर है तो कहेंगे योग नहीं है। तो योग होने के लिए क्या चाहिए, समानता चाहिए। परंतु मान लो समानता नहीं है, पर फिर भी कहते नहीं ये तो कहते हम तो विवाह करेंगे शादी करेंगे, तो फिर वो जो पंडित होता है जो ज्योतिषी होता है वो कहता है ठीक है तो ग्रहों को प्रसन्न करो, पर कैसे प्रसन्न करो, इतना उपवास रखो व्रत रखो ये त्याग करो दान करो ये करो वो करो, न जाने कितनी लंबी लिस्ट उनको देता है, हाँ ये पूजा करो ये पाठ करो, तो ये सब करेंगे तो ग्रह मिलेंगे और फिर संबंध होगा। अर्थात कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा, जब तक त्याग नहीं किया है तब तक वो ग्रह मिलेंगे नहीं, संबंध नहीं होगा, वो सफल नहीं होगा। तो अगर संबंध में सफलता चाहते हैं तो कुछ त्याग करो, बिना त्याग के ये संबंध नहीं होगा ठीक, सफल नहीं होगा, तो फिर वो सब करते हैं। अब हमारा संबंध शिव बाबा से होना है तो समानता तो कुछ है ही नहीं, भक्ति मार्ग में तो कुछ समानता नहीं है। हे भगवान आप तो कितने ऊंचे हो और मैं तो नीच हूं, आप तो कितने पावन हो मैं तो पतित हूं, आप तो दाता हो मैं तो भिखारी हूं, तो मेल तो कुछ है ही नहीं, एक जैसी बात तो कुछ दोनों में है ही नहीं, और परमात्मा तो निराकार है और मैं तो फलाना हूँ, नाम रूप धाम धर्म जाति भाषा वाला भगवान तो इन सब से परे है, तो मैं इन सब के साथ हूँ तो मेल कैसे होगा। तो मेल करना है मिलाना है, तो इसीलिए सबसे पहला कदम क्या है, जो राजयोग की हम परिभाषा देते हैं, राजयोग की परिभाषा क्या है, अपने आप को आत्मा समझ परमात्मा को यथार्थ रूप से याद करना। तो आत्मा समझना ये पहला कदम है, क्योंकि परमात्मा भी तो एक आत्मा है, तो आत्मा और आत्मा का मिलन होगा, आत्मा और देह का मिलन नहीं होगा, दोनों अलग है। आत्मा का ओरिजिन परमात्मा है, देह का ओरिजिन प्रकृति है, तो मनुष्य मरता है तो प्रकृति में चला गया शरीर, पंच तत्वों में विलीन करना है, वो पंच तत्वों से आया हुआ शरीर है, और आत्मा तो परमात्मा से आई है, तो परमात्मा को याद करते हैं प्रभु इनकी आत्मा को शांति मिले, वो तो ईश्वर के पास चली गई, जिसकी जो चीज थी उसके पास चली गई। तो अगर शिव बाबा को याद करना है तो पहला कदम है आत्माभिमानी बनना, आत्मा समझ फिर यथार्थ रूप से मुझे याद करो। और गीता में ये भी आता है, मैं जो हूं मैं जैसा हूं मैं अपनी पहचान खुद ही देता हूं, मनुष्य तो जिस भावना से मुझे भजते हैं उनको उस भावना का भाड़ा मिलता है। जो बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा, कोई गणेश का पुजारी है तो गणेश की पूजा करता है तो उसको गणेश का ही साक्षात्कार होगा। कोई हनुमान का भक्त है तो उसको हनुमान का साक्षात्कार होगा। अगर हनुमान का भक्त को गणेश का साक्षात्कार हो जाए तो वो खुश नहीं होगा, उसको तो हनुमान ही चाहिए, है ना। तो जो जिसका भक्त है उसको उसकी भावना का भाड़ा भगवान ही देता है, कराता तो परमात्मा ही है साक्षात्कार, लेकिन उसकी भावना अनुसार। तो जो जो मुझे जिस भावना से बचता है उसकी भावना का भाड़ा देता हूँ, मेहनत की तो उसका फल तो देता हूँ लेकिन मैं नहीं मिलता हूँ, मेरे मिलने का रास्ता मैं खुद ही बताता हूँ। अब ये भगवान के महावाक्य हैं, यानी अपनी पहचान वो खुद ही देते हैं और अपने साथ योग लगाने की विधि भी बताते हैं। हे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, मुझे सब संबंधों से याद करो, और उसके लिए देह से देह के सब धर्मों को भूल जाओ, माम एकम याद करो। क्योंकि तुम न देह हो न कोई देह के संबंध आपके हैं, ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। और जब कर्मों का हिसाब किताब पूरा होता है, कोई किसी का नहीं है, चाहे कितना भी प्यारा क्यों ना हो, कितने साल उसके साथ रहे क्यों ना हो, कितना घनिष्ठ संबंध क्यों ना हो, लेकिन उसको भी छोड़ना पड़ता है। लेकिन परमात्मा के साथ आत्मा का ऐसा घनिष्ठ संबंध है जो अनादि अविनाशी है, लेकिन कहीं टूट गया है, इसीलिए वो शक्ति का अनुभव होता नहीं है। दो तार जोड़ते हैं ना कनेक्शन करने लिए, दो तार होती है नेगेटिव पॉजिटिव, ये तार को जोड़ने के लिए। तो कहीं एक अगर खुल जाए निकल जाए तो भी शक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए परमात्मा से सब संबंध जोड़ने के लिए, वो शक्ति अनुभव करने के लिए, ये देह अभिमान का रबर तो हटाना पड़ेगा। तो रबर हटाना माना ये देह और देह के सब धर्म सब संबंध सबको भूल जाओ, मारो गोली। मारो गोली माना छोड़ नहीं दो, बाबा छोड़ने लिए कभी नहीं कहते हैं, लेकिन फंसो नहीं, ये मेरे नहीं है, बस ये भी आप ट्रस्टी बन जाओ, साक्षी बन जाओ, और ये सब ड्रामा अनादि अविनाशी है, खेल समझो, और ये सब बाबा का है मेरा नहीं, तो नष्टो मोहा हो जाएंगे। तो ये बाबा से अगर लगन में मग्न होना है, लव में लवलीन होना है, तो उसकी पहली विधि है, पहला कदम है ये देह से न्यारापन। जब तक देह से न्यारे नहीं बने हैं तब तक मिलन का तो सवाल हो ही नहीं सकता है। और कैसे पता चलता है कि अभी देह से न्यारे नहीं हुए हैं? जब तक व्यर्थ संकल्प आते हैं। व्यर्थ संकल्प आना माना अभी तक देह से न्यारे नहीं हुए हैं, क्योंकि देह में ही सारे व्यर्थ संकल्प है। क्योंकि व्यर्थ संकल्प किस किस के आते हैं? कोई कहते हैं ना, मुझे बहुत व्यर्थ संकल्प आते हैं, बहुत व्यर्थ संकल्प आते हैं, बहन जी मुझे मेरा योग लगता नहीं, बहुत व्यर्थ संकल्प आते हैं। पर जब अगर हम सोचते हैं ये व्यर्थ संकल्प किसके होते हैं, तो व्यर्थ संकल्प में कौन कौन याद आता है, क्या क्या याद आता है? पहले तो व्यक्ति याद आएंगे। अब हम बैठे हैं बाबा को याद करने और हमको मेरा बच्चा याद आ गया है, मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, मेरा पति क्या कर रहा होगा, हाँ मेरी माँ क्या कर रही होगी, जो भी, तो व्यक्ति की याद आएगी। वो कहेंगे भाई अभी क्यों याद आई ये बात, मुझे तो बाबा को याद करना है। तो भले वो व्यक्ति की याद कोई गलत नहीं है, वो तो संबंध है ना, लेकिन उस समय वो गलत है, क्योंकि उस समय तो बाबा को याद करने बैठे हो। अभी व्यक्ति की याद नहीं आई तो कोई वस्तु की याद आएगी, फलानी चीज मैंने वहां रखी थी, पता नहीं कोई उठा के तो नहीं ले गया। याद बैठे हैं बाबा को याद करने और वो वस्तु याद आ गई है, वो वस्तु भी मेरी थोड़ी है, तो बाबा की है। हाँ, मैं तो ट्रस्टी हूँ, उस समय क्यों याद आ गई, लेकिन थोड़ा मोह है। तो व्यक्ति की याद, वस्तु की याद, और कोई अगर बहुत कीमती चीज हो, वैभव हो, हमने इतना सोना चांदी लॉकर में रखा है, इतना धन हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, कहीं बैंक का दिवाला न निकल जाए, पता नहीं क्या क्या हो जाता है दुनिया में, तो इतना मैंने धन रखा है, तो वो वैभव, वो मकान जमीन जायदाद, है ना, वस्तु और वैभव, ये याद आते हैं, ये सब उस समय व्यर्थ है। वैसे तो जरूरी है क्योंकि वो आपका है, लेकिन जब हम कोई और कार्य करने बैठे हैं तो उस समय वो याद क्यों आना चाहिए, उसका समय अपना है याद करने का, अमृत वेला, ये सब क्यों याद आना चाहिए, तो वो व्यर्थ के खाते में जाता है। फिर व्यक्ति वस्तु वैभव, फिर कोई घटना ही, अब बीती बात हो गई, इतनी बात पुरानी सालों की बात हो गई, लेकिन वो घटनाएं भूलती नहीं है। हाँ, वो जैसे याद आती है, कोई ऐसा ट्रेजिक हुआ होगा जिसमें किसकी मृत्यु हुई होगी, बहुत माना दुखदायी कोई परिस्थिति आई होगी, तो वो परिस्थिति याद करते जैसे उस समय कांपने लगते हैं, जबकि उस समय वो कोई परिस्थिति नहीं है, वो तो बीत गए, और वो जो बीती हुई बात है वो दोबारा उस रूप में कभी नहीं आएगी, लेकिन वो परिस्थिति याद आते ही जैसे कांपना शुरू कर दे, जैसे अभी हो रहा है, जबकि उस समय उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो वो बीती सो बीती। इसीलिए बाबा कहते होली होली माना होली, फिर बाबा ड्रामा कहते हैं बिंदु लगाओ, हाँ बीती बातों को याद मत करो, ड्रामा में सब कल्याणकारी है, इसीलिए हाँ ये क्यों हुआ क्या हुआ कैसे हुआ, ये नहीं होता तो ये नहीं होता, वो होता तो वो होता, पता नहीं कहाँ 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 पहुँच जाते हैं, और इतना दूर दूर तक पहुँच जाते हैं जो पता नहीं उसका न कोई सिर है न पैर। एक कहानी सुनाते हैं ना, एक कहानी है शेख चिल्ली की, कहानी बताते हैं, तो शेख चिल्ली था, उसको घी का घड़ा मिल गया, तो घी का घड़ा मिल गया तो उसने सोचा अब मैं क्या करूँ इस घी के घड़े से, तो मैं इसको बेचूंगा तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा, फिर ज़्यादा धन आ जाएगा, फिर मैं शादी करूँगा। अब वो घी का घड़ा सिर पर लेके चल रहा था और ये सोचता जा रहा था कि ये करूँगा घी का घड़ा, फिर मैं शादी करूँगा, फिर मेरे बच्चे होंगे, फिर मेरा बच्चा मुझे कहेगा पापा मुझे एक पैसा दो, मैं कहूँगा नहीं देता हूँ, तो उसने क्या किया, वो भूल गया कि सिर पर घी का घड़ा है और हाथ नीचे किया, तो क्या हो गया, हाँ तो क्या हो गया, हाँ घी का घड़ा ही टूट गया, तो गया घी का घड़ा, अभिमान आ गया ना, मैं बाप बनूंगा, मेरे बच्चे होंगे, मेरे पास बहुत धन होगा, बच्चा पैसा मांगेगा मैं नहीं दूंगा, हाँ क्योंकि मेरा है, मैंने कमाया है, तो बस खत्म। तो ये शेख चिल्ली की कहानियाँ हैं, तो पास की बातें भी तो ऐसे ही होती है ना, पास की भी बातें और भविष्य की भी बातें ऐसे होती है, जबकि कोई जरूरत ही नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, तो व्यर्थ में ये सब आता है, घटनाएं चाहे आगे की चाहे पीछे की। फिर और क्या आता है, सोचते जाओ लिस्ट बन जाएगी, क्या 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 याद आता है, व्यर्थ सब व्यर्थ, कोई मतलब ही नहीं है, हमारा समय श्वास संकल्प शक्ति इसमें व्यर्थ जाता है, अनुमान लगाते रहते, ये ऐसे करेगा इसने ऐसे किया होगा, अनुमान लगाना या वहम करना, ये करूँगा ये हो जाएगा, ये करूँगा वो हो जाएगा, शक करना किसी पर,
विश्वास नहीं करना, विश्वास तो एक बहुत बड़ा गुण है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, इट इज बेटर टू ट्रस्ट एंड फेल देन टू नॉट ट्रस्ट एंड सक्सीड। किसी पर विश्वास नहीं करना, चलो सफलता पा भी ली, किसी पर विश्वास नहीं किया, खुद मैं सर्वो सर्वा हूं, मैं ही हूं बस, मुझे किसी और पर विश्वास है ही नहीं, तो क्या होगा? हाँ चलो सफल हुए भी, लेकिन अकेले पड़ जाएंगे, अकेले। और अकेले तो कभी सुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य की ये प्रकृति है, उसको संबंध चाहिए, साथ चाहिए। अकेले पड़ जाएंगे, सो इट्स बेटर टू ट्रस्ट एंड फेल। अगर फेल भी हुए विश्वास रख करके, किसी ने विश्वासघात भी कर लिया, परंतु आप ये सोचो को हिसाब किताब था, चुक तू हो गया, पर आपके अंदर जो गुण है विश्वास का, जिसको बाबा कहते हैं शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, ये सब बातें अगर विश्वास के बिना तो हो ही नहीं सकती ना। विश्वास तो जरूरी चाहिए उसके लिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये कई ऐसी व्यर्थ बातें हैं जिनमें हम अपना समय, श्वास, संकल्प शक्ति व्यर्थ गंवाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं इन सबको स्टॉप। उस दिन भी बाबा ने कहा कि ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है, 12-13 बार तो दिन में बजता होगा, हर घंटे घंटे या हर 2 घंटे में 3 मिनट, हर घंटे घंटे 1 मिनट या जो भी, तो उस समय एकदम लाइन क्लियर होनी चाहिए और कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, बस मैं और बाबा। तो लव में लवलीन होने के लिए समानता चाहिए। और वैसे भी बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है उसमें 3 समानताएं तो बताई है, 3 समानताएं तो है ही, अनादि अविनाशी समानताएं हैं। एक समानता है स्वरूप की समानता, मैं आत्मा भी ज्योति स्वरूप, शिव बाबा भी ज्योति स्वरूप, ये एक बहुत बड़ी समानता है। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति तो बहुत जरूरी है अगर बाबा के प्यार में समाना है तो, क्योंकि स्वरूप में समान है हम, तो देह अभिमान का जो जो पर जो ये वस्त्र है कहो या ये जो आवरण है, इसको तो हटाना ही होगा। और मैं आत्मा ज्योति बिंदु आत्मा या भ्रकुटी में निवास करने वाली इस देह के भान से न्यारी। फिर दूसरी समानता है कि एक ही घर है, शिव बाबा का भी वही घर है जो मुझे आत्मा का घर है, मेरा भी वही घर है जो मेरे पिता का घर है, एक ही घर के वासी हैं हम। हाँ वही एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस तो वही है ना हमारा घर, जो पिता का घर होता है वो बच्चे का भी तो घर होता है ना, बाद में भले वो मकान चेंज कर ले लेकिन जन्म लेता है तो पिता के घर में ही रहेगा ना। तो हमारा अनादि अविनाशी घर तो एक ही है जो हमारे पिता का घर है, इसीलिए घर भी एक है, स्वरूप भी एक है, एक जैसा है। और तीसरी समानता है गुण भी एक जैसे, जो शिव बाबा के गुण है आत्मा के भी वही गुण है, इसीलिए कह दिया आत्मा परमात्मा का अंश है। अंश क्यों माना? क्योंकि गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है, हाँ संख्या में अंतर है, वो शांति का सागर है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, लेकिन मैं अशांत स्वरूप तो नहीं हूँ ना, अशांत हूँ और फिर शांति मांगू वो नहीं है, लेकिन मैं भी शांत स्वरूप हूँ, वो अंश वो शांति का मेरे अंदर भी है। इसीलिए आत्मा सो परमात्मा कह दिया, परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया, क्योंकि समझ रहे अंश हरे के अंदर है परमात्मा का, अंश हरे के अंदर है माना वही गुण हर चीज में है।
इसीलिए सर्वव्यापी मान लिया। लेकिन फिर बाबा कहते पिता है, तो पिता है तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तो समझ की बात है, वो तो वर्षा देता है, हमें अधिकार देता है। अगर ऐसे ही सर्वव्यापी है तो वर्षा कहाँ से मिलेगा? वो हमारा पिता है, उनसे हमारा अनादि अविनाशी संबंध है। तो जब हमको ये पूरी पहचान मिल जाती है और जो संबंध हमारा अनादि अविनाशी संबंध वो टूट गया है देह अभिमान के कारण, उसको हमें फिर से जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, उसकी विधि क्या है? तीन बातों की समानता का चिंतन करना। जैसे फ्यूज उड़ जाता है तो वो तार कट जाती है, तो फिर तार को जोड़ना पड़ता है, तांबे को तांबे से जोड़ना पड़ता है। तो ये भी बाबा कहते हैं, जो शिव बाबा के गुण हैं वो मेरे भी गुण हैं, जो शिव बाबा का धाम है वो मेरा भी धाम है, जैसा शिव बाबा का स्वरूप है मेरा भी वैसा ही स्वरूप है। अब उसका चिंतन, तो समाने के लिए पहले चिंतन चाहिए, क्योंकि देह अभिमान में आधा कल्प से फंसे हुए हैं। तो जब तक इन तीनों बातों का चिंतन नहीं होगा, तब तक हम शिव बाबा के निकट कैसे जाएंगे? तो शिव बाबा के निकट जाने लिए ये तीनों बातें, स्वरूप में समानता, धाम में समानता, गुणों में समानता, इसका चिंतन बहुत जरूरी है। और इसी चिंतन के आधार से मन स्वच्छ होता है, क्योंकि शिव बाबा की याद तो वो शुद्ध दूध की तरह है। वो शुद्ध दूध कौन से बर्तन में टिकेगा? जो बर्तन साफ हो, शुद्ध हो। अशुद्ध मैले बर्तन में वो शुद्ध पवित्र सफेद दूध कैसे टिकेगा? या तो मैला हो जाएगा या तो वो फट जाएगा। तो इसीलिए अगर दूध को रखने लिए बर्तन भी देखो अलग से रखते हैं, ये दूध का बर्तन है भाई, इसमें खाना नहीं पकाना, खटाई आ जाएगी, लग जाएगी तो दूध फट न जाए, केवल दूध के लिए। इसीलिए बाबा कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है। अब कौन गया होगा शेरनी का दूध निकालने के लिए? जो उसको पता चला होगा तो वो केवल सोने के बर्तन में ही टिकता है, कोई चला तो नहीं गया होगा। लेकिन शेरनी का दूध का मतलब है इतनी बहादुरी, हम अपने मन के अंदर इतनी स्वच्छता लाएं जो शिव बाबा की याद उसमें सहज आ सके। इसलिए जब हम राजयोग की यात्रा बताते हैं तो उस यात्रा में हम चार बातें बताते हैं। पहली बात क्या है? विचार सागर मंथन। ये बहुत जरूरी है, विचार सागर मंथन, जो ज्ञान का मंथन, गुणों का मंथन, शक्तियों का मंथन पहले जरूरी है। उस दूध को मक्खन निकालने लिए मंथन करना पड़ता है, जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं उस ज्ञान की का मंथन करना, चिंतन करना। पहले होता है मनन करना, फिर होता है चिंतन करना, फिर होता है मंथन करना। तीनों में अंतर है। मनन किसको कहेंगे? जब हम उसी बात के बारे में सोचते हैं, आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, आज वरदान ये था, आज स्लोगन ये था, आज प्रश्न उत्तर ये था, आज हेडिंग ये थी, तो उसका मनन करते हैं। कल भी एक माता अपने बच्चे को लेकर आई, तो बच्चे के लिए मुझे कहती है, देखो देखो बहन, इनको ना बाबा की मुरली बहुत याद है, पूरी याद है। मैंने कहा अच्छा, क्या याद है? तो बच्चे को कहती है, बताओ आपकी हेडिंग क्या थी मुरली की? फटाफट फटफट पढ़ लिया, हाँ बोल दिया। अच्छा, आज प्रश्न उत्तर क्या था? फटफट फटफट बोल दिया। हम तो भूल जाएंगे लेकिन वो बच्चे को याद था। अच्छा, आज का वरदान क्या था? फटफट बोल दिया। अच्छा, आज का स्लोगन क्या था? फटफट बोल दिया। तो कहा कि ये बच्चा देखो उसको उसको सब आता है, लेकिन जब उसका अर्थ पूछा तो अर्थ तो कुछ भी नहीं मालूम क्योंकि बस रट लिया। तो रटना भी अच्छा है क्योंकि कम से कम मुख से कुछ ज्ञान तो बोला। तो इसको कहते हैं मनन करना, क्योंकि उसको याद तो किया होगा ना, तो मेमोरी में याद तो किया होगा, कितनी बार उसको रिपीट किया होगा, तो उसको कहेंगे मनन। फिर उसका होता है चिंतन। चिंतन क्या होता है, उसी उसी बात की गहराई में जाना, उसका चिंतन करना, माना बाबा ने ये किस संदर्भ में कहा, इसका मतलब क्या है, उसकी गहराई में जाना, इसको कहेंगे चिंतन करना। फिर होता है मंथन। तो मंथन माना उसमें से मक्खन निकालना, मक्खन तो उसके अंदर ही होता है लेकिन उसको बिलोड़ना पड़ता है तब मक्खन निकलेगा। तो मंथन माना उसी पॉइंट से फिर और पॉइंट्स निकालना, इतना गहराई में जा करके उसमें से और पॉइंट्स निकालना, लेकिन उसका मूल आधार है निश्चय। ये किसके महावाक्य हैं, ये भगवान के महावाक्य हैं। अब भगवान के महावाक्य है तो उसमें कोई संशय तो उठ नहीं सकता है, परमात्मा तो सत्य है, तो सत्य परमात्मा की पहचान भी सत्य है, वो जो सुनाएंगे वो भी सत्य है। भक्ति मार्ग में तो अंधविश्वास के रूप में जो महात्मा ने कहा, जो गुरु जी ने कहा सत वचन महाराज, या उस रूप से तो अंधश्रद्धा नहीं है। बाबा हर बात का अर्थ बताते हैं, हर बात की गहराई में ले जाते हैं, कॉन्ट्रास्ट बताते, अंतर बताते हैं, वास्तविकता बताते हैं, फिर हम उसको टटोल सकते हैं। जैसे थियरी तो मिल गई, फिर प्रैक्टिकल्स भी है, उसका उसका जो मूल प्रैक्टिकल है वो भी जीवन में आना चाहिए। कई कहते हैं हमारा योग नहीं लगता है, हम कहते हैं कैसे कहते हो योग नहीं लगता है, का योग नहीं लगता है। अच्छा आपके जीवन में सहन शक्ति बढ़ी है, तो कहा सहन शक्ति तो बहुत बढ़ गई है मेरे, पहले बहुत गुस्सा आता था अभी गुस्सा नहीं आता है। तो गुस्सा नहीं आता और पहले आता था, इसका मतलब योग लग रहा है ना, तभी तो गुस्सा नहीं आता है। पहले सामने जवाब देते थे, अभी नहीं देते हैं, शांत रहते हैं। तो शांति का गुण आ गया ना आपके अंदर, माना योग लगा है तभी तो आया है ना, ये गुण ये शक्ति आपके अंदर आ गई है, इससे सिद्ध है कि आपका योग लग रहा है, लेकिन आप जितना चाहते उतना नहीं लग रहा है, इसीलिए कहते मेरा योग नहीं लगता, व्यर्थ संकल्प आते हैं, व्यर्थ संकल्प आते हैं। तो व्यर्थ संकल्पों को खत्म करने की युक्ति है ये तीन बातें जो समानता की है, उसका पहले चिंतन करके उसका स्वरूप बनना, अपने आप को परम धाम में बाबा के साथ देखो, वो बिंदु बिंदु से मिला और उस बिंदु से बातें करे, बाबा से बातें करो, बाबा इसको कहते रूरियान करो। ब्रह्मा बाबा कितनी रूरियान करते शिव बाबा से, मुरलियों में आता है ना, हाँ मैं बाबा को क्या कहता हूँ, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से रूरियान करता है। तो हम बच्चे भी बाबा से रूरियान करें, एक एक संबंध से रूरियान। मेरा बच्चा है तो बच्चे रूप से कैसे रूरियान होती है, पिता है तो पिता से कैसे रूरियान होती है, साजन है तो साजन से कैसे रूरियान होती है। तो हर संबंध से बाबा से रूरियान, एक बाबा ही सहारा, वो बाबा दिल से कहा, निश्चय से कहा, नशे से कहा, तो देखो योग तो लगा ही हुआ है। अब जहां समाने की बात आती है तो बाबा कहते उनको अपने से अलग करते ही क्यों। किसी ने मिसाल दिया कि उसके पास एक लोटा था, लेकिन लोटा लोटे में छेद थे, दो छेद थे। तो जैसे लोटा भरता था तो वो छेद होने के कारण वो छेद से वो पानी निकल जाता था, तो लोटा भरता ही नहीं था। तो किसी ने उसको कहा, अगर लोटा भरता नहीं है तो आप निकालते ही क्यों हो, पड़ा रहे। अब पड़ा ही रहेगा तो पानी निकलेगा थोड़ी, वो तो पड़ा ही है उसके अंदर। तो समा जाना माना उसमें ऐसे समा जाओ जो निकले ही नहीं। इसको आज कह दिया आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। विलीन तो होती नहीं, क्योंकि आत्मा तो अनादि अविनाशी है, उस रूप से तो समाती नहीं है कि कोई पताशा है वो पताशा पानी में पिघल गया और उसमें खत्म हो गया। नहीं, आत्मा का अस्तित्व तो सदा ही है, कभी नष्ट नहीं होता है। और परमात्मा भी बिंदु स्वरूप ही है, वो कोई अखंड ज्योति तो उस रूप से है नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते लव में लीन होना माना बाबा की विशेषताओं को ऐसे उसको समझ करके वो स्वरूप बन जाना, ताकि बाबा की याद में खो जाओ। इसको कहते खो जाना, इंग्लिश में कहते हैं लॉस्ट इन लव, प्रेम में खो जाना। इतना प्रेम, क्योंकि उनकी गुणों का चिंतन करते 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 उसमें खो गए। भक्ति मार्ग में भी गुणों का चिंतन करते हैं, आरती में तो चिंतन ही करते ना, आरती करते या कीर्तन करते हैं। तो कीर्तन का मतलब क्या होता है, कीर्ति, कीर्ति से कीर्तन शब्द आया है। तो कीर्ति का मतलब क्या है, गुण गायन करना। कीर्तन में परमात्मा के गुण गाते हैं, लेकिन गुण गाते गाते फिर मांग लेते हैं, हे प्रभु आप तो करुणा सिंधु हो और मुझ पर थोड़ी सी करुणा बरसाओ। अब उसको याद दिला दिया कि तुम ये करो मेरे लिए, आप रहम के सागर है, सागर हो, मुझ पर थोड़ा रहम करो। अब भगवान को पता नहीं है क्या कि वो रहम का सागर है, मैं याद दिला रही हूँ उसको, क्या उसको तो पता है, और मैं याद दिलाकर फिर उसे मांग रही हूँ। तो बाबा कहते हैं वो गुणों का गायन करते करते इतना घनिष्ठ संबंध हो उस बिंदु में, सिंधु की शक्ति है, इतना संबंध हो, इतना प्रेम हो जो उसमें समा जाओ। और दुनिया में भी हम देखते हैं किससे प्रेम होता है, ऐसे नहीं किसी से भी प्रेम हो जाता है। पहली बात, प्रेम उससे होता है, हाँ प्रेम किससे होगा, उससे होगा जो सत्यवादी होगा, जो सच्चा होगा। अगर पत्नी से पति सच्चा नहीं है, जो भी उसके दिल की बात है वो उसको सुनाता नहीं है, या पत्नी सच्ची नहीं है पति के साथ, तो वो प्रेम कम हो जाता है, क्योंकि सच्ची नहीं है, सच्चा नहीं है, छिपाता है। तो एक दो से कुछ भी छिपाना नहीं, इतना क्लियर, इतना स्पष्ट, तब प्रेम होता है। तो जो सत्य है उस सत्य से प्रेम होता है, कुछ छिपाता है तो प्रेम कम होता जाता है। तो भगवान से भी प्रेम तब हो जब पहले हम इतने सत्यवादी हैं कि बाबा से कुछ भी छिपाई नहीं। तो पहली बात, किससे प्रेम होता है जो सत्य है। दूसरा, किससे प्रेम होता है जो सुंदर है। सुंदरता से जरूर प्रेम होता है, जरूर होता है। कोई सुंदर स्त्री है, सुंदर है, सुंदर आकर्षित करता है। एक बच्चा कितना आकर्षित करता है, फूल कितना आकर्षित करता है, सुंदर है। और भगवान की सुंदरता जैसी तो किसी की सुंदरता नहीं, इसीलिए उनको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो भगवान की सुंदरता क्या है, वो बिंदु में सिंधु है। ऐसी सुंदरता तो किसी की नहीं हो सकती है। तो सत्यम भी है, सुंदरम भी है, और शिवम भी है। शिवम माना कल्याणकारी, सदा दाता है, देने वाला दाता, जब भी देता छप्पड़ फाड़ के देता है, जो देता रहता है, जो देता है हमको उसे प्यार हो जाता है।
क्योंकि उनसे कुछ मिलता है। तो इसलिए बाबा से प्यारा कौन है इस संसार में, कोई भी नहीं है, सब स्वार्थी है। इसीलिए बाबा कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। चलो अगर कोई सच्चा होगा भी किसी के साथ, लेकिन एक दिन तो उसको भी जाना है, हर एक को इस दुनिया से जाना है, कोई अजर अमर अविनाशी तो है ही नहीं इस दुनिया में। तो क्यों ना उनसे प्यार हो जो कभी मरता नहीं, जो कभी हमसे बिछड़ जाएगा ये कभी सोच भी नहीं है। मनुष्यों के लिए तो डर लगता है कहीं हमको छोड़ न दे, कहीं हमसे दूर न चला जाए, कहीं हमको हमको देना न बंद कर दे। भगवान ऐसे नहीं करेगा, इसलिए वो सत्यम शिवम सुंदरम है। तो उनसे बढ़कर और कौन हो सकता है जिससे हमारा प्यार हो। बाकी तो बाबा कहते सबसे प्यार रखो, पर क्यों सबसे प्यार है, क्योंकि बीज से प्यार है, तो सारे झाड़ से तो प्यार है ही है, सारी दुनिया से हमारा प्यार है। ऐसे तो नहीं कि मेरा सबसे प्यार है लेकिन मेरे पड़ोसी से मुझे प्यार नहीं है, नहीं। किसी ने कहा आई लव एवरी वन एक्सेप्ट माई नेबर, सबसे मुझे प्यार है लेकिन जो पड़ोसी है ना मेरा, वो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अब पड़ोसी ने क्या बिगाड़ा भाई तुम्हारा, चलो कुछ बिगाड़ा भी होगा, कोई हिसाब किताब था, चुप तो हो गया, अभी क्यों दुश्मनी रख रहे हो। तो बाकी सारी दुनिया से प्यार है, पड़ोसी से नहीं है। तो पड़ोसी से भी अगर दुश्मनी रखी, वो तो आपके सबसे नजदीक है, तो सारा दिन तो वही याद आएगा आपको पड़ोसी, क्योंकि आपके पास में ही रहता है। तो वही प्यार रखो उनसे भी, ताकि काम में वही आएगा। जब कोई ऐसी बात होगी ना तो मित्र संबंधी और काम में नहीं आएंगे, पड़ोसी काम आएगा, होता है ना, आता है ना। कि इसलिए पड़ोसी तो हमेशा पड़ोसी के साथ हमेशा बना के रखना। कई हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं, अकेले अकेले रहते हैं फ्लैट में, अकेले रहते और अंदर मर गए, और मर गए पता भी नहीं चला, अकेले है, दो तीन दिन शव पड़ा है, फिर जब बदबू आने लगी तब पड़ोसी को पता चला, अरे ये तो बदबू आ रही है क्या है। फिर पुलिस को बुलाया, पुलिस ने ताला तोड़ा तो पता चला कि अंदर भरा हुआ पड़ा है। अगर वो पड़ोसी के साथ संबंध होता अच्छा तो पड़ोसी काम आता ना, लेकिन पड़ोसी से तो संबंध रखा भी नहीं, पर अंत में वही काम आया क्योंकि उसी ने पुलिस को बुलाया, मित्र संबंधी तो भूल ही गए थे। तो इसीलिए सबसे प्यार सिवाय इसके ये भी क्यों। कोई हंसी की बात सुनाऊं, तो कोई एक व्यक्ति भाषण करता था तो कहता था मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो उसकी जो पत्नी थी वो नाराज हो गए, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं तुम्हारी बहन हूँ क्या, मैं तुम्हारी बहन हूँ क्या, भाइयों और बहनों कह तो वो तो सामने बैठी है। तो उसने फिर अपना बदली किया, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों सिवाय एक के। सिवाय एक के, क्योंकि पत्नी सामने बैठी है। अब बाबा कहते वो भी क्यों सिवाय एक के, वो भी तो आत्मा, आत्मा तो भाई भाई है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये क्यों अंतर होना चाहिए, सब आत्मा ही है। ये धर्म जाति भाषा, बाबा ने इन सब हदों को निकाल दिया। दुनिया में तो कितनी हदें हैं, बात नहीं पूछो। तो इसीलिए बाबा कहते विश्व कल्याणकारी, आज भी बाबा ने विश्व कल्याणकारी शब्द का। तो विश्व कल्याणकारी कौन हो सकता है जिसकी बेहद की बुद्धि हो, बेहद की दृष्टि हो, सबके प्रति, हाँ सबके प्रति सबका कल्याण हो। ऐसे नहीं सबका हो बाकी एक का न हो, ये तो नहीं। लेकिन वो तब होगा जब दिल इतना साफ होगा, इतना स्वच्छ होगा, भगवान से बाबा से इतना घात प्यार होगा, और उस प्यार में आत्मा खो जाए, उस बिंदु में सिंधु समान जो शक्ति है उसको अनुभव करे, बस एक, हाँ?
वो शांति का सागर में शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा गई और समा करके बाबा में खो गई। मुक्ति तो मिलती नहीं, आत्मा तो सदा अमर है लेकिन प्रेम में जरूर खो जाती है और मुक्त हो जाती है। और फिर बाबा बंधा हुआ है मदद करने लिए, बहुत कहानियां हैं भक्तों की, वो खोया हुआ था कैसे भगवान ने उसको मदद किया। तो बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि बस एक की लगन हो। मैं कई उदाहरण आपको दे सकती हूँ, मैं एक उदाहरण तो जरूर देती हूँ। मैं श्रीलंका गई थी, श्रीलंका तो श्रीलंका में एक माता जो हमको एयरपोर्ट पर छोड़ने आई, हम जा रहे थे भारत आ रहे थे, तो उसने अपना अनुभव सुनाया। बाबा की बहुत प्यारी बच्ची मुझे सेंड ऑफ मुझे ले गई थी एयरपोर्ट पर, तो वो अपना अनुभव सुना रही थी कि उस समय सुनामी आया था श्रीलंका में, वो सागर के किनारे पर टहल रही थी, उसकी दो सहेलियां थी साथ में, वो सागर के किनारे पर चल रहे थे और अचानक वो इंडोनेशिया में सुनामी आया था, तो वो भूकंप हुआ था सागर में और उसका जो असर था वो श्रीलंका तक भी आया, इंडोनेशिया का पूरा वो सागर में। तो ये बहन सागर किनारे पर चल रही थी दो बहनों के साथ और अचानक सुनामी आया, इतनी जोर से लहर आई और ये तीनों बहनों को वो लहर ले गई ना, सागर में ले गई। तो उसी समय उसने कह दिया बाबा बाबा, हाँ इतना प्यार से उसने कहा बाबा, और अचानक जादू हो गया। क्या जादू हो गया? उसी लहर के बीच में एक और लहर आई, वो लहर इस बहन को वापस धरती पर ले आई। वो दो बहनें तो चली गई सब, वो तो डूब गई, लेकिन जैसे ही इसने बाबा कहा, जैसे बाबा ने इसको गोद में ले लिया और ये वापस बच गई। तो बच गई, हाँ बाबा ने इसको जैसे बचा दिया, बाबा कहा, बाबा ने उसकी पुकार सुन ली और वो तो गई। लेकिन वो अपना अनुभव सुनाती थी कि मैंने तो अभी ये निश्चय किया कि अभी मेरा बाकी का जीवन बाबा के लिए है, क्योंकि बाबा ने मुझे नया जन्म दिया। बहुत बड़ी बिजनेस लेडी है, बिजनेस वुमन है, बड़ा उनका व्यापार है, पति के साथ ही करती है, लेकिन कैसे वो बस बाबा बाबा इतनी सेवा करती है बाबा की, क्योंकि बाबा ने मुझे नया जीवन दिया। तो देखो बाबा से वो प्रेम, तो कहती मैं इतने घंटे योग करती हूँ, मैं तो भूल ही जाती हूँ बाकी सब कुछ, जब बाबा के प्यार में खो जाती हूँ। इतने गुणों का गायन करते 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 बस एक बाबा, मुझे उस समय कुछ याद नहीं रहता, बाबा के प्यार में खो जाती हूँ। तो हम सबको क्या करना है, क्या करना है, हाँ बाबा के प्यार में खो जाना है। कैसे खो जाएंगे? उनके गुणों को याद करते करते, मांगना कुछ नहीं है, अंतर में आत्मा इतनी भरपूर हो, बाबा ने सब कुछ दिया है, बस भरपूर आत्मा उस बाबा को धन्यवाद करके उनके प्यार में खो जाए, सत्यम शिवम सुंदरम के, उनसे प्यारी कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
सके समझ।